मकान नहीं है। और गांव वाला तो हर समय चिंता है जीवन में मेरे को कुछ करना है तो अच्छा सा मकान बनाना चाहिए। लोगों का ऐसा चिंता, हर गृहस्थ का ऐसा चिंता है ना, जीवन में कोई एक मकान बना सकेगा मेरा मुनि से जन्म सार्थक हो गया, मैं जीवन में एक मकान बना दिया। तो घर में गया उसका मिट्टी का एक छोटा सा कुटीर था, जैसे गांव लोग का घर होता है उसका था। तो घर का अंदर में घुसा, जाकर उधर ध्यान किया, ध्यान में चिंता किया, अभी मेरे लिए एक दो मंजिल वाला मकान बन जाओ, दो मंजिल वाला मकान बन जाएगा। तो साथ साथ तो देखा एक टू स्टोरी बिल्डिंग हो गया, हाँ टू स्टोरी बिल्डिंग हो गया, उसको थोड़ा आनंद आया। लेकिन असली आनंद कब आता है मालूम है? आपको कुछ अच्छा चीज प्राप्त होता है उसका आनंद नहीं आता है। आनंद आता है कब? ना आपका आपको अच्छा चीज प्राप्त हुआ दूसरा लोग जो देखते हैं तब आनंद आता है ना। एक माता जी लोग अच्छा गहना पहनेंगे, अच्छा साड़ी पहने घर में बैठे रहेंगे, क्या आनंद आएगा? तो जाके जब बाहर लोग दिखाएंगे, ओह देखो मेरा कैसा साड़ी है, मैं कैसा गहना पहनता हूँ, कब तो आनंद आता है ना। मेरा बचपन का समय का बात याद आता है, जब छोटा का समय दुर्गा पूजा होता है, सरस्वती गणेश पूजा होता है ना, तो पिताजी नया कपड़ा किन देते हैं, पहनने देते हैं। तो जब हम लोग नया कपड़ा पहनते तो साथ साथ बाहर जाते, देखो कितना अच्छा कपड़ा मैं पहना, तो मेरे को कितना प्राप्त हुआ उसका आनंद नहीं आता है। मेरा इतना है जब दूसरे लोग को दिखाता हूँ तब मेरे को आनंद आता है, मेरे को बहुत कुछ नहीं देखने से आनंद नहीं आता है। तो ये लोग जो दो मंजिल वाला मकान हो गया तो साथ में बाहर निकल गया, गांव वालों को दिखाया, देखो तुम्हारा सब छोटा झुपड़ी छोटा वाला घर है, मेरा दो मंजिल वाला घर है। सब बाहर निकल गया को क्या दिखाओ? हाँ वो देखा वो पड़ोसी का चार मंजिल वाला डबल, हाँ जब देखा वो दो मंजिल वाला मकान मिला लेकिन आनंद नहीं, उसका दुख और बढ़ गया, वो और जलते हो उसका क्यों चार मंजिल वाला मकान हो गया। तो फिर अंदर में गया तो फिर मेडिटेशन ध्यान करते हैं, मेरा भी चार मंजिल वाला मकान बन जाओ। तो जब मेरा चार मंजिल वाला मकान हो गया तो पड़ोसी का आठ मंजिल वाला हो गया। तो घर में जाके हर रोज ऐसा ध्यान करते हैं और उनका औसत बढ़ते रहते हैं, मेरे को एक दिला दो, वो दिला दो, जो ध्यान करते हो मिल जाता है, लेकिन उनका दुख भी बढ़ जाता है। क्यों दुख बढ़ जाता है? पड़ोसी का डबल हो जाता है, और जब देखते हैं जलते हैं और जलते रहते हैं, तो मन में शांति नहीं। उससे कैसे मन में शांति आएगा, कैसे मन में शांति आएगा? तो एक दिन एक बुद्धि उनका आ गया, तो घर में घुसा, घर में बैठते और ध्यान करते है, वो बेताल जी मेरा एक आंख फुटा दो, आंख काना कर दो एक आंख। तो साथ साथ उनका एक आंख क्या हुआ? काना हो गया, काना करेक्ट हिंदी, काना हो गया। एक आंख काना हो गया, तो एक काना आंख काना हो गया, वो गया पड़ोस का दो आंख काना हो गया, अंध हो गया। तो जब देखा दो आंख अंध हो गया, बहुत आनंद है। अभी तक इतना चीज उसको प्राप्त होता था वो जलता था, तो वो एक आंख काला हो गया तब दुख नहीं, जब पड़ोस का दो आंख अंध हो गया। ये है ये भौतिक सुख का ये उद्भव का स्थान है। हमारा भौतिक जगत में जितना आनंद प्राप्त होता है हम लोग को, ये आनंद का उच्च है, ये दूसरा का प्रति ईर्ष्या करना है, इससे ही ये आनंद आता है। तो ऐसा जब गृह मजदूर लोग होता है, और गृह मजदूर लोग क्या करते हैं, सारा रात भर सो जाते हैं अथवा रति क्रिया में मग्न रहते हैं, ये गृह मजदूर का काम है। रात को सो जाएंगे नहीं तो रति क्रिया में मग्न रहेंगे, और दिन को क्या करेंगे, सारा दिन भर आत्मीय स्वजन को प्रतिपालन करने के लिए अर्थ उपार्जन करेंगे। ऐसा जीवन को अतिवाहित करते हैं लोगों ने, ऐसा जीवन को अतिवाहित करते हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है लोगों को मालूम नहीं है। जीवन का समस्या को समाधान करने के लिए सब लोगों ने प्रयास करते हैं,
कितना समस्या है हमारा जीवन में। जब पॉलिटिकल लीडर लोगों ने हमारा गांव पर आते हैं वोट होने से पहले, बोले क्या समस्या बताओ मेरे को, क्या तुम्हारा समस्या, मैं सब समस्या समाधान कर दूंगा, तब हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा गांव में रास्ता नहीं, हमारा गांव में स्कूल नहीं, हमारा गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं, हमारा बहुत सारी समस्या, ये बात बताते है ना, हा? मेरे में ये बना दो वो बना दो, हम लोग का नौकरी का समस्या है, हम लोग का पानी का समस्या है, हम लोग का शिक्षा का समस्या है, हम लोग का अर्थनैतिक समस्या है, बहुत सारी समस्या के बारे में हम लोग बताते हैं। और ये सब समस्या का समाधान करने के लिए बहुत सारी उपाय भी हम लोग करते हैं, अवलंबन करते हैं, लेकिन जीवन का असली समस्या क्या है, समस्या को दूर करना बात छोड़ो, जीवन का असली समस्या क्या है ये भी लोगों को मालूम नहीं है। असली समस्या क्या है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण तो समस्या को समाधान करने का उपाय तो देता है, समस्या क्या है वो भी बता देते हैं। इन लोगों का बुद्धि इतना कम है कि सब लोग समस्या में भुगते रहते हैं लेकिन समस्या क्या है मालूम नहीं पड़ता है। तो जीवन का असली समस्या भगवान कृष्ण बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दशान दर्शन, ये चार असली समस्या है, ये चार असली समस्या है। और दूसरा जितना समस्या है वो समस्या का समाधान है, लेकिन वो सब समस्या समाधान होने से भी हमारा जीवन का समस्या समाधान नहीं हो सकता है जब तक ये चार समस्या का समाधान नहीं होता है। इस समस्या का समाधान कौन दे सकता है, हमारा पिता माता दे सके है, हमारा सरकार दे सकते हैं, देवता लोग दे सकते हैं, कोई भी नहीं दे सकते है। इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि, लोगों को जन्म लेने पड़ते हैं, जन्म का टाइम बहुत दुख, जब मातृगर्भ में संतान संतति रहते हैं तब बहुत दुख, उधर छोटा सा जगह पर रहने पड़ता है, सर नीचे रहता है पैर ऊपर रहता है और वो सब कीड़ा उसको काटते हैं, तो बहुत दुख। और जन्म का समय इतना कष्ट उसको प्राप्त होता है, पूर्व जन्म का सब कुछ बात उसको भूल जाते हैं। शास्त्र में ऐसा बताया गया, जब जीव मातृगर्भ में रहते हैं तब उनका ज्ञान है। सात महीना जब होता है, उस सात महीना मातृगर्भ में रहते हैं तब परमात्मा को दर्शन कर पाते हैं, तब परमात्मा को दर्शन करके उनके पास प्रार्थना करते हैं, इस बार मेरा जन्म होगा तो आपका ही भजन करूंगा, जननी जठरे खिलाम जखन विषम बंधन पासे, एक बार प्रभु दिखा दिया मेरे बंसिले एजिना पासे, भक्ति में ठाकुर बताते हैं। तो वो प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं जब जननी का जठर में गर्भ में था, जननी जठरे खिलाम जखन विषम बंधन पास बंधन में था, एक बार आप मेरे को दर्शन दिए थे तब मैं सोचता था इस बार मैं जन्म लूंगा, मातृगर्भ से मेरे को उद्धार मिलेगा, करीब भजन तब मैं तुम्हारा ही भजन करूंगा, तुम्हारा भजन करके इस भौतिक जो संसार चक्र है, संसार चक्र से मेरे को छुटकारा मिलना चाहिए, इस भाव कर तुम्हारा भजन किया था। लेकिन जन्म का समय इतना दुख होता है तो दुख का प्रभाव से सब कुछ भूल जाता है, जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, इस जन्म काल में दुख है। और मृत्यु का समय भी वैसा ही है, मतलब मृत्यु का समय इतना कष्ट होता है, हजारों बिच्छू काटने से जैसा कष्ट है। बिच्छू कभी काटा आप लोग को, किसी को बिच्छू काटा, एक बिच्छू काटने से इतना स्थान लगेगा तो उसको नाचने लगेगा, शुरू करेगा, इतना कष्ट होता है। तो हजारों बिच्छू काटेंगे इतना कष्ट है जन्म मृत्यु का समय, और जरा व्याधि वृद्ध समय सब कुछ मन चाहते हैं लेकिन कुछ भी कर नहीं पाएंगे, ये बहुत दुख है। वृद्ध समय कोई पूछेगा नहीं तो बहुत दुख है। और व्याधि रोग होता है, व्याधि होता है, व्याधि का कोई निराकरण है? किसी का रोग होने से व्याधि होने से है नहीं, दवाई है ना, दवाई है, दवाई होने से व्याधि दूर हो जाता है। लेकिन ऐसा कोई एक दवाई है एक टैबलेट खाने से और दूसरा कोई व्याधि नहीं होगा, ऐसा दवाई है? ऐसा दवाई नहीं, परंतु ऐसा दवाई सब लिखा है पाश्चात्य देश में देखा तो हर दवाई का ऊपर लिखा हुआ है इस दवाई को खाने से यही रोग तुमको होगा, ऐसा उसको बोलते साइड इफेक्ट, ये दवाई खाओगे तो इस रोग तुमको होगा, ये साइड इफेक्ट तुम्हारा होगा। तो ऐसा जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये जीवन का चरम समस्या है। तो हम लोग जो कुछ काम करते हैं, जो कुछ चिंतन करते हैं, ये सब कुछ पहले ये चिंता करना चाहिए, ये सोचना चाहिए तो मेरा कर्म, मेरा प्रयास, मेरा चिंतन जीवन का असली समस्या का समाधान का कुछ उपाय करता है। तो ये चिंतन नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। हमारा जीवन सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन, इस चार कर्म हम लोग करेंगे। मनुष्य और पशु का क्या फर्क है? तो पशुओं ने तो यही प्रश्न ही पूछते हैं, सुबह जब जागते हैं जागने के साथ साथ क्या अन्वेषण करते हैं, क्या अनुसंधान करते हैं? कैसा आहार निद्रा भय और मैथुन, इस चार चीजों के बारे में लोग अनुसंधान करते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, किसका अनुसंधान करना चाहिए? वेदांत सूत्र बताया गया अथात ब्रह्म जिज्ञासा, आहार निद्रा भय मैथुन का अनुसंधान करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जन्म का लक्ष्य होता है ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए। ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब क्या, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मैं किधर से आया हूँ, मैं क्यों दुख पाता हूँ, मृत्यु के बाद मेरा क्या गति होगा, इसको ब्रह्म जिज्ञासा बोलते हैं। देखो जब पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है, पृथ्वी का उसी गोलार्ध का मानव जब जागते हैं तो उसी गोलार्ध का मनुष्य में कितना प्रश्न और उत्तर हो रहा है। घर में बच्चे लोग पिता माता को पूछते हैं, माता क्या खाऊंगा, किधर जाऊंगा। स्कूल कॉलेज में छात्र और शिक्षक के बीच में प्रश्न उत्तर होता है। हॉस्पिटल में जो रोगी होता है और डॉक्टर का बीच में प्रश्न उत्तर होता है। अदालत में वकील और कैदी का बीच में प्रश्नोत्तर होता है। कितना सारी प्रश्नोत्तर होता है, तो इतना प्रश्नोत्तर जो होता है दिन भर चलता है, सारा दिन भर। तो कोई किसी को पूछता है कि मैं कौन हूँ, कोई पूछता है सारा दिन में? हम लोग बचपन से अभी तक कितना प्रश्न पूछा। इधर आप लोग इकट्ठे हुए, कोई 20 साल हुआ, किसी को 30 साल हुआ, 40-50 साल उम्र का लोग इधर इकट्ठा हुए, तो बचपन से आप लोग कितना प्रश्न जिज्ञासा किए। जो कुछ देखते हैं हम लोग पूछते हैं, पिताजी ये क्या है, माताजी वो क्या है, स्कूल में कितना प्रश्न का उत्तर हम लोग को मिला। लेकिन आपसे कोई पूछा किसी दिन मैं कौन हूँ, हाथ उठाए, कोई पूछा? एक भी कोई पूछा नहीं। आप लोग पूछ के बांग्लादेश नेपाल से इधर तक आ गए, दोहा किधर है मालूम है, अमेरिका किधर है मालूम है, रशिया किधर मालूम है, चांद मंगल ग्रह सब मालूम है, पृथ्वी के बारे में सब कुछ मालूम हो गया, एक चीज मालूम नहीं तो क्या है, मैं कौन हूँ। प्रभुपाद बोलते जगत की चमत्कार है, ये आधुनिक सभ्यता एक ज्ञान का चमत्कारिता है। सब कुछ मालूम होने का व्यवस्था है, लेकिन एक चीज के बारे में ज्ञान को छुपा के रखते हैं, ये मैं कौन हूँ। एक प्रश्न पूछने के लिए ये मनुष्य जन्म का लक्ष्य है, ये मैं कौन हूँ। तो इस प्रश्न का उत्तर गीता भागवत में दिया गया। इस प्रश्न का उत्तर स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेगा, ये गीता भागवत में दिया गया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताए, ममय वंश जीवलोक जीवभूत सनातन, ये जीव हमारा नित्य सनातन अंश है। हर जीव भगवान का अंश होता है, हर जीव भगवान का अंश होता है। इसलिए प्रभुपाद ने बताया, द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इज टू नो हु आम आई। आत्म उपलब्धि करने का पहला सोपान है मैं कौन, इसको जानकारी करना। मैं कौन हूँ इसको जानने से बात और सब कुछ मालूम। ये एक फॉर्मूला है, जैसे अलजेब्रा में एक फॉर्मूला में सब कुछ समाधान किया जाता है, ये एक फॉर्मूला है। मैं कौन हूँ इसको मालूम होने से सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। तो गीता भागवत में इसी के बारे में चर्चा किया जाता है, ब्रह्म जिज्ञासा। और इसका अनुसंधान करने के लिए ये मनुष्य जन्म है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ आह निद्रा भय मैथुन करना, उसी के बारे में अनुसंधान करना, ये मनुष्य जन्म का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या, का जीवन में असली आनंद, दिव्य आनंद को प्राप्त करना। इस जगत में हम लोग जो आनंद आते हैं वो असली आनंद नहीं है, ये आनंद नहीं है, ये इसको ये असली सुख भी नहीं है। प्रभुपाद बताते हैं, हम लोग जो सोचते हो मैं सुखी हूँ, कैसा सुखी हूँ, सारा हफ्ता भर के बहुत परिश्रम करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, सब उस पर पैसा कमाई करते हैं, तो वीकेंड में जाते हैं, सी बीच में जाते हैं, सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, वो आई एम एंजॉयिंग, मैं आनंद उपभोग करने के लिए जा रहा हूँ। मैं प्रभुपाद आनंद उपभोग के लिए करने के लिए नहीं जाता है, वो जाता है दुख को भूलने के लिए जाता है। इस जगत में जो सुख है ये सुख नहीं है, ये दुख को भूलने के लिए प्रयास। इसको हम लोग सोचते हो मैं सुख करने के लिए जा रहा हूँ, लोग सिनेमा जाते हैं आनंद करने के लिए नहीं, दुख को भूलने के लिए। इस भौतिक जगत में जो सुख है ये सुख नहीं, हर्ष में हम लोग बहुत दुख पाते हैं, और थोड़ा दुख का परिमाण कम हो जाता है, मैं सोचता हूँ मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन ये असली सुख नहीं है। ये ज्यादातर सुख शांति और आनंद तीन तरीके का चीज होता है, सुख और शांति और आनंद। इस सुख शांति और आनंद के बारे में मैं बताऊंगा, आप लोग जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए उसके बारे में आप लोग को आइडिया आएगा। सुख को क्या सुख बोलते हैं, सुख किसका सुख होता है, देह का सुख होता है ना मन का सुख होता है। मन का क्या होता है, शांति ना सुख। मन को क्या चाहिए, शांति चाहिए। और शरीर को क्या चाहिए, सुख चाहिए। शरीर को चाहिए सुख, मन को चाहिए शांति, और आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा को चाहिए आनंद। ये सुख शांति आनंद तीन अलग चीज होता है, इसका हम लोग व्यवहार करते हैं, वो सुखी है, वो मेरा मन बहुत आनंद है, लेकिन इस सुख में पार्थक्य है। एक देह का सुख होता है, मन का शांति होता है, आत्मा का
आनंद होता है।
तो सुख शांति और आनंद कैसे प्राप्त होता है लोगों को, इसके बारे में चर्चा करना चाहिए। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बताए, तो जीव का दैहिक सुख कैसे आता है, तो जब देह ये इंद्रिय कोई विषय का संस्पर्श में आते हैं, तब एक देह के द्वारा हमको कुछ सुख प्राप्त होता है। इंद्रिय कितना इंद्रिय है हमारा, पांच इंद्रिय है, चक्षु है, नासिका है, जिह्वा है, और त्वक है, और कर्ण है, आँखों है, नासिका है, ये पांच इंद्रिय होता है। तो पांच इंद्रिय जब पांच विषय का संस्पर्श में आते हैं, तब हम लोग कुछ अनुभव होता है। जैसा आँखों से मैं सुंदर गुलाब फूल देखता हूँ, तब मन को मन आनंद में भर जाता है। और जिह्वा से मैं रसगुल्ला खाता हूँ, रस का जब जीवा का स्पर्श करता है, तब क्या होता है, मेरे को सुख प्राप्त होता है। जब इंद्रिय एक विषय का संस्पर्श में आते हैं, उससे जीव को भोग होता है, वो भोग करता है, तो सुख आता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताए, जेही संस्पर्श जब होगा दुख जो नहीं एवते। जड़ विषय के संस्पर्श में जब इंद्रिय आते हैं, जीव का जो भोग होता है, एक भोग दुख का जन्म स्थान होता है। ये असली सुख नहीं है, ये सुख का मतलब लगता है क्या? नहीं, सुख होगा तो किस लिए होगा? एक देह के लिए होगा। देह और आत्मा ऐसी नहीं है, आत्मा एक शरीर से दूसरा होता है। तो देह के लिए सुख होता है, शरीर के लिए सुख होता है। तो कोई बोलता है शरीर के लिए हमारा जीवन में आनंद चाहिए, सुख चाहिए, तो बहुत लोग परिश्रम करते हैं, बहुत परेशानी करके पैसा कमाते हैं। गांव का लोग गरीब होता है, पैदल में जाते हैं, साइकिल में चढ़ के जाते हैं। शहर का जो बड़ा बड़ा बाबू लोग होते हैं तो मर्सिडीज गाड़ी में जाते हैं। हाँ, एयर कंडीशन मकान है, सोफा सेट है, सब कुछ, बैंक बैलेंस है। तो गांव का आदमी सोचते हैं, ओ इस शहर का बाबू इतना पैसा है, इतना अच्छा गाड़ी है, बाड़ी है, बहुत आनंद में है। उसको सोचते हैं क्या, मैं दुखी हूँ, मेरा बाइसाइकिल लेके सारा दिन पैडलिंग करके जाते हैं, वो कितना आराम से जाते हैं। लेकिन जो एयर कंडीशन गाड़ी में जाते हैं, जिसका बहुत बड़ा मकान है, वो सोफा में एयर कंडीशन घर में बैठा है, लेकिन वो सोचता है वो काल मेरे को इनकम टैक्स वाला पकड़ेंगे, वो सेल टैक्स वाला पकड़ेंगे, ऐसे उनको कितना चिंता। उसको आनंद करने के लिए सब कुछ चीज उसका घर में है, लेकिन सब कुछ होने से भी वो सुखी नहीं। अशांत से कुतः सुखम, जिसका मन में शांति नहीं, तो सुख कैसा आएगा? वो शरीर का सुख के लिए सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन मन में उनका शांति नहीं। इसीलिए शरीर का सुख का व्यवस्था होने से भी मन का शांति का व्यवस्था नहीं होने से वो जीवन ही बर्बाद हो जाता है, वो जीवन भी बर्बाद हो जाता है। हम लोग देखते हैं ना, कैसा धनी आदमी है, धन संपद शरीर का सुख के लिए सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन उनका पत्नी का साथ झगड़ा लगता है, बच्चा लोग बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा कुछ कुछ होता है, धन संपद सब होने से भी जीवन दुख ही दुख रहता है। क्यों? न मन में शांति नहीं है। तो प्रभुपाद ने बताया, देखो तो देह का सुख चाहिए ना मन का शांति चाहिए? क्या चाहिए हमको? हाँ, देह का सुख भी नहीं जरूरत है, मन का शांति भी जरूरत नहीं। क्या हम लोग जरूरत है? आत्मा का आनंद चाहिए, आत्मा का आनंद चाहिए। लोगों को मन में शांति नहीं। क्यों मन में शांति नहीं? ज्ञान का अभाव। जो अनित्य संसार को नित्य करके मानते हैं, वो लोग ज्यादा अशांति में भुगते हैं। एक ज्ञान का अभाव होने से अशांति प्राप्त होता है। तो यथार्थ ज्ञान का संस्पर्श में लोग आते हैं, तब उनका जीवन शांतिमय हो जाता है। तो इंद्रिय जब विषय का संस्पर्श में आता है, तब क्या प्राप्त होता है? इंद्रिय विषय का संस्पर्श में आने से क्या प्राप्त होता है? सुख प्राप्त होता है। इंद्रिय जब विषय का संस्पर्श में आता है, सुख प्राप्त होता है। और मन जब ज्ञान का संस्पर्श में आता है, तब क्या प्राप्त होता है? शांति प्राप्त होता है। शांति उत्पन्न होता है ज्ञान का संस्पर्श में आने से, सुख उत्पन्न होता है विषय का संस्पर्श में आने से। तो आनंद का उत्पन्न होगा कैसा? आत्मा किसी का संस्पर्श में आने से आनंद का प्राप्त हो सकता है? जब भगवान का संस्पर्श में आए। जब तक आत्मा भगवान का संस्पर्श में न आता है, तब तक जीवन में आनंद नहीं मिलेगा। ये आनंद ही जीवन का लक्ष्य है, सब जीव का एक ही लक्ष्य है, आनंद। अरे आनंद कैसे मिलेगा? जब भगवान के साथ हम लोग संपर्क करेंगे। ये आनंद जैसे भौतिक जगत में हम लोग सबको आनंद चाहिए, तो आनंद के लिए आनंद का उच्च क्या है, आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है? तो आनंद के लिए लोग प्रेम करते हैं ना, लोग क्यों प्यार करते हैं? ये प्यार करने का उद्देश्य क्या है? ना प्यार करने से मेरे को क्या आएगा? आनंद प्राप्त होगा। इसीलिए हम लोग प्यार करते हैं, पिता को प्यार करते हैं, माता को प्यार करते हैं, बहनी को प्यार करते हैं, आत्मीय स्वजनों को प्यार करते हैं। तो प्यार करने से, प्रेम करने से मेरे को आनंद आएगा। जैसा एक गांव, एक शहर में कितना लोग आते हैं और जाते हैं, इससे आप लोग आनंद नहीं आते हैं। लेकिन जैसा आप लोग इधर रहते हैं तो आप लोग कोई नेपाल से आए हुए, कोई बांग्लादेश आए हुए, भिन्न भिन्न शहर से गांव से आए हुए, तो काठमांडू शहर हर आदमी कितना, हर दिन कितना आदमी लोग काठमांडू जाते हैं, लेकिन अपना बच्चा को आनंद नहीं आता है। जो दिन आप जाएंगे बच्चा को आनंद आएगा ना, क्यों? बच्चा को आनंद आएगा। हर रोज हजारों आदमी जाते हैं काठमांडू तो उसका आनंद नहीं आता है, जब जो दिन आप जाएंगे उसका आनंद आएगा। क्या कारण क्या है? हाँ, इसको इसको प्यार करते हैं, प्रेम, एक प्रेम ये आनंद का उत्स होता है। हम लोग सब आनंद चाहिए, तो आनंद का उत्स क्या है? प्रेम करना। प्रेम करने से आनंद उत्पन्न होता है, इसीलिए हम लोग सब प्रेम करने के लिए कोशिश करता हूँ, प्यार करने के लिए कोशिश करता हूँ। जीवन में थोड़ा आनंद आएगा, मेरे को थोड़ा आनंद आएगा। लेकिन जिसको भी प्यार करता हूँ इस जगत में, ये प्यार का कोई दाम ही नहीं देता है। जिसको भी प्यार करते हैं वो अंत में एक लाठी देकर भाग जाता है। ये जगत का प्रेम ऐसे ही होता है, ये जगत का प्रेम प्रेम नहीं है। जो प्रेम जो शब्द होता है, ये प्रेम शब्द इस भौतिक जगत में व्यवहार करने के लिए योग्य नहीं है। इस प्रेम शब्द एकमात्र भगवान और जीव का बीच में जो संपर्क है उसको ही प्रेम बताते हैं। भगवान को प्यार करना जो है उसको ही जीव भगवान को जो प्यार करते हैं उसको बोलते हैं प्रेम, और जीव जीव को जो प्यार करते हैं उसको बोलते हैं काम। हाँ, वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम का एक विकृत प्रतिफलन होता है काम। मैं बताऊँ, मैं तुमको प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, क्या करता हूँ, जोर से बताइए क्या करता हूँ, पीछे वाला समझ नहीं पाते हैं। प्रेम और काम, जब तक एक दोनों का बीच में क्या फर्क है मालूम नहीं होता है, तब तक हम लोग अज्ञान अंधकार में रहेंगे। प्रेम क्या है और काम क्या है, इस काम को प्रेम करके हम लोग मानते हैं, इसलिए इस भौतिक जगत में हम लोग का स्थिति है। एक काम प्रेम नहीं है, इस जगत में जो संपर्क है ये सब काम है। एकमात्र प्रेम संपर्क होता है भगवान का ही साथ, और प्रेम का विकृत प्रतिफलन इस जगत में इसको बोलता है काम। निजेंद्रिय प्रतिवांसा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रतिवांसा धरे प्रेम नाम। हमारा इंद्रियों को तर्पण करने का जो वासना इच्छा, इसको बोलते हैं काम। ये काम का डेफिनेशन होता है, संज्ञा होता है। और प्रेम क्या, न कृष्ण इंद्रिय प्रतिवान था तारे बोले प्रेम, कृष्ण का इंद्रियों को प्रतिदान आनंद दान करना, इसको बोलते हैं प्रेम। तो जीवन का ये है असली लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य होता है भगवान का साथ हमारा जो प्रेममय संपर्क, इस संपर्क को हम लोग पुनः स्थापन करना। इस संपर्क को पुनः स्थापन कर पाएंगे तो हमारा जीवन का पूर्ण सार्थकता होगा। यही परम धर्म, जिसका परम धर्म होता है भगवान का साथ प्रेममय संपर्क को पुनः स्थापन करना। अभी जगत में बहुत सारी धर्म का उत्पन्न हुआ, बहुत लोग भिन्न भिन्न धर्म को धर्म करके मानते हैं, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने बताए इस जगत में धर्म करके लोगों ने जो कुछ फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, ये कोई भी धर्म नहीं है। पृथ्वी के धर्म नाम जत किसी चले भागवत कहे सब परिपूर्ण चले। इस पृथ्वी में धर्म का नाम करके जो कुछ चल रहा है भागवत में बताता है ये सब छल धर्म है, ये कपट धर्म है, ये असली धर्म नहीं है। असली धर्म दूसरा होता है, कैसा मैं अभी बताऊंगा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताए, मैं हर युग में आ रहा हूँ। भगवान हर युग में इधर आ रहा है, क्यों भगवान आ रहा है इधर, क्या कारण? भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताए, मैं हर युग में आ रहा हूँ, क्यों आ रहा है? हाँ, जोर से बताए। सामने वाला नहीं बोलेंगे, पीछे वाला थोड़ा बोले, जोर से मैं सुनूंगा। वेरी गुड, धन्यवाद, बहुत अच्छा है। तो भगवान कृष्ण क्या बताए, मैं आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, हाँ धर्म संस्थापन करने के लिए, हाँ मैं धर्म का स्थापना करने के लिए आया हूँ। आप लोग आइए, मैं धर्म के बारे में बताऊंगा, सब धर्म कैसा फॉलो करेंगे मैं बताऊंगा। मैं धर्म स्थापन करने के लिए आया हूँ, तो सब लोग आ गए कृष्ण के पास। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत सारी बात बताए ना भगवद गीता में, ये करो, ये जोग करो, वो जोग करो, सब बताए। अंत में क्या बताए, सर्वधर्मान माँ में तुम सर सर्वधर्मान परिचय, इसका भगवान कृष्ण बताते हैं। ये पहले बताते मैं धर्म के बारे में बताने के लिए आया हूँ, और अंत में बोलता है क्या, धर्म को परिचय करो। इसके बाद कोई बताया अभी तक, कोई शास्त्र में है, कोई मुनि ऋषि ने बताया कि धर्म का त्याग करो, कोई बताता है? सब लोग बोला अधर्म का त्याग करो, किसी उल्टा बात बताते हैं। हर शास्त्र जो भी मुनि ऋषि बताए, अधर्म का त्याग करो, धर्म करो, पाप का त्याग करो, पुण्य करो, आप किसी उल्टा बात बताते हैं, हाँ सर्व धर्म का परिचय, किसी ये बता नहीं सका है तुम सर्व अधर्म का परिचय करो। ये बात किसी ने आशा होता था कि सर्व अधर्म का परिचय करो, और किसी ने कैसे बता सर्व धर्म का परिचय करो। सर्व धर्म कैसे परिचय करने के लिए भगवान कृष्ण सिखाए, तो ये बहुत बड़ा द्वंद हो गया। हाँ ये कैसा बात है, ये सब कुछ बताए, अंत में ऐसा एक बात बता दिए, ये लोगों को बहुत अंधकार में डाल देते हैं कि क्यों भगवान कृष्ण के धर्म को परित्याग करो, क्यों बताए नहीं अधर्म को परित्याग करो, सिर्फ धर्म को परित्याग करो बताए इतना ही नहीं, दूसरा लाइन में क्या बताता है, तुम्हारे कुछ पाप करते हैं तो मैं मुक्त कर दूंगा, अहम तुम सर्व पापे मुख्य सामना, जो पाप किया इससे मुक्त कर दूंगा, लेकिन पुण्य मत करो, धर्म मत करो, धर्म का छोड़ दो। तो इसका भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न व्याख्या करेंगे, कोई बोलता है सर्व धर्म को परित्याग करो, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, यहूदी धर्म को परित्याग करो, अरे तब तो ऐसे धर्म नहीं था, तब भगवान कृष्ण क्यों बताएंगे, तब तो क्रिश्चियन धर्म ही नहीं था, तब भगवान कृष्ण क्यों बताएंगे, उस धर्म का परित्याग करो तो हिंदू बन जाओ ना, ये नहीं। भगवान कृष्ण का बताना का ये उद्देश्य था, जो वेदों पुराण में लोगों को धर्म के बारे में जो कुछ बताया गया, तुम धर्म करो, तो लोगों ने धर्म करते हैं, क्यों धर्म करते हैं लोगों ने, धर्म करने का लक्ष्य क्या है, क्या उद्देश्य करके ले लोग धर्म करते हैं, अर्थ, अर्थ पहला अर्थ देखो, धर्म करने से अर्थ प्राप्त होगा, और जब अर्थ प्राप्त होगा तो अर्थ लगे क्या करेंगे, ईश्वर को डोनेशन दे देंगे सब, ईश्वर कामना चरितार्थ है, धर्म अर्थ काम, और काम तो कभी भी चरितार्थ नहीं होता है, न जा तो काम कामन उपभोग्य सम्मत है, जैसे आग में जितना भी घी डालो कभी आग निर्वापित नहीं होता है, और बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं, और दुख ही दुख देते हैं, तो मुक्ति चाहते हैं, धर्म अर्थ काम और मुक्ति, ये चतुर्वर्ग, इस जगत में चतुर्वर्ग के बारे में ही सबको बताया गया, वेद वेदांत पुराण उपनिषद में हर जगह पर एक चतुर्वर्ग के बारे में बताया गया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन श्रीमद् भागवतम जब भगवत गीता का ज्ञान समाप्त हुआ तो भागवत कथा शुरू हुआ, भगवत गीता में बताया सर्वधर्मान परित्यज्य, और भागवत शुरू हुआ धर्म प्रज्ञित कैतवस्त्र परम निमस्तरण सदा विद्यं वास्तव मात्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद् भागवतम अमलम प्रमाणम प्रेम कुमार श्रीमद् भागवतम महामणि कृते किंवा परेश्वर सद्य हृदय अवरुद्ध तत्व कृतवी सुस्तुति तत्खना धर्म प्रज्ञित। देखो गीता और भागवत जो समस्त वेद वेदांत उपनिषद का सार निर्यास होता है, ये भागवत ग्रंथ क्या है, ये तो वेदोर तरर गणितम फलम होता है, वेद विषय का परिपक्व सुमिष्ट रसाल फल होता है श्रीमद् भागवतम, ये भागवतम वेदांत का सार होता है, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इच्छते। यही भगवत गीता भगवान कृष्ण ने जितना ज्ञान दिए यही सब ज्ञान का सार कथा भगवत गीता में बताया गया। और जो ग्रंथ गीता और भगवत भागवत गीता का उपसंहार में अंत में बोलता है सर्वधर्मान परित्यज्यम, और जब गीता का ज्ञान समाप्त होता है तो भागवत ज्ञान शुरू होता है। धर्म प्रज्ञा परिचय, ये धर्म का परिचय कर, कौन सा धर्म का जो धर्म का लक्ष्य होता है सिर्फ अर्थनैतिक उन्नति, फिर भौतिक कामना वासना रूपक जो धर्म, ये धर्म असली धर्म नहीं है। धर्म सुनिश्चित पुंसा विचक्षण कथा सुझा न उत्पाद जगरती समय वही केवलम, जो कुछ धर्म तुम पालन करना करो, यज्ञ करो, त्याग करो, तपस्या करो, जाग करो, जो कुछ भी करो, सब कुछ करने से भी जो भगवान हरि का कथा का प्रति रति जागृत नहीं होता है। धर्म सुनिश्चित पुंसा विचक्षण कथा सुझा न उत्पाद जगरति, तब क्या होता है न श्रम है वही कवलम, इसे परिश्रम ही परिश्रम होता है, इसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो हम लोग धर्म का नाम पर जो कुछ भी कर रहा है ये धर्म मेरा जीवन का अंतिम लक्ष्य में पहुंच नहीं सकता है, इसलिए धर्म क्या है उसको मालूम होना चाहिए। हम लोग जरा हिंदू लोग बहुत सारे धर्म का ऊपर हम लोग प्राधान्य देते हैं, जाग यज्ञ करते हैं, चैरिटी दान धर्म करते हैं, लेकिन इस कर्म का द्वारा हम लोग को कुछ फायदा होगा, कुछ कल्याण होगा, इस जगत में हम लोग को सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, लेकिन भौतिक बंधन से हम लोग को छुटकारा नहीं मिलेगा। भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चरम लक्ष्य जीवन का चरम कर्तव्य क्या है, इस चरम कर्तव्य के बारे में हम लोग को मालूम होना चाहिए, मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है। इसलिए भागवत बताते हैं हमारा परम कर्तव्य क्या है, सबाय पुंसा परम धर्म जत भक्ति अधक्षर, सब मनुष्य का परम धर्म, जिनका बहुत सारे धर्म होता है, देश का अनुसार, काल का अनुसार, जीव का ऊपर, प्रकृति का त्रिगुण का प्रभाव का अनुसार बहुत सारे धर्म है, लेकिन परम धर्म क्या होता है। परम धर्म वही धर्म होता है जो धर्म को अनुशीलन करने से जीव का साथ परमात्मा परमेश्वर भगवान का प्रेममय संपर्क का पुनः स्थापन होता है, वही जीव का परम धर्म होता है। और उसी धर्म कैसे स्थापन हो सकता है उसी बारे में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, हरे नामानुकीर्तनम, सिर्फ भगवान हरि का नाम संकीर्तन का माध्यम से और परम धर्म साधित हो सकता है। इस कॉलेज में परम धर्म होता है, कृष्ण संसार करो खाली अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, सब धर्म का ही सार होता है। संसार का परिचय करना नहीं, इस संसार गृहस्थ धर्म का परिचय करना जरूर नहीं, इसलिए कृष्ण संसार करो, संसार करो एक कृष्ण का संसार करो, कृष्ण को केंद्र में रख के तुम्हारा संसार करो। जो संसार बंधन का कारण होता है वो संसार तुम्हारा मुक्ति का कारण बन जाएगा, जब भगवान कृष्ण को केंद्र में रखेंगे वो मुक्ति का कारण बन जाएगा। अभी सारा पृथ्वी पर बहुत लोगों ने स्लोगन देते हैं कि मानव कल्याण करो, जीव का कल्याण करो, मानव को प्रेम करो, ऐसा बहुत धर्म संस्कारक लोगों ने बताते हैं, जीव को प्रेम करो। हाँ, हमारा पश्चिम बंगाल में विवेकानंद ने बताया, जीव को प्रेम करो, जीव प्रेम करेगी सही जन सही से ईश्वर। लेकिन भागवत शास्त्र का अनुसार एक जीव और एक जीव को प्रेम नहीं कर सकता है, प्रेम नहीं कर सकता है, जीव के साथ जीव का संपर्क प्रेम नहीं होता है, जीव का साथ भगवान का संपर्क ही प्रेम होता है। जीव का बीच में प्रेम नहीं होता है, जीव का बीच में क्या हो सकता है, काम ही हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम सिर्फ भगवान और आत्मा के बीच में प्रेम होता है, तो भगवान के साथ प्रेम करो और सबको घृणा करो, पिता माता लड़का पुत्र कन्या सब घृणा करो, क्योंकि प्रेम तो नहीं होगा, फिर तो भगवान के साथ प्रेम होगा। तो मेरा पत्नी का साथ प्रेम नहीं होगा, पिता का साथ प्रेम नहीं होगा, माता का साथ प्रेम नहीं होगा, क्या पिता माता पत्नी भाई बहन प्रेम होगा? कब वो प्रेम हो जाएगा? काम कब प्रेम हो जाता है? काम कैसा प्रेम हो जाएगा? भगवान के साथ मेरा संपर्क तो प्रेम है, लेकिन तुम्हारे साथ मेरा संपर्क काम है, तो ये संपर्क कैसा प्रेम हो जाएगा? जैसा दृष्टांत दिया जाता है, एक आदमी है उनका पत्नी है, वो पत्नी को प्यार करते हैं, हाँ, वो पत्नी को बहुत प्यार करने से भी वो काम नहीं है। कब वो काम नहीं है? तो मैं पत्नी को प्यार करता हूँ, क्यों प्यार करता हूँ? मेरा पत्नी सुबह से नींद से जागते रहते हैं, जाके मंदिर परिक्रमा करते हैं, भगवान के लिए रसोई करते हैं, भगवान का कपड़ा बंद हो कितना अच्छा है। इसीलिए जो प्यार करेगा वो प्यार क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रेम, उसको बताएगा प्रेम। लेकिन मैं पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ, क्यों? तो मैं जब नींद से उठता हूँ, चाय कप टी का कॉफी कप ले आते हैं, मैं जब ऑफिस से आता हूँ मेरा शरीर से कोट खोल देता है, हाँ, मेरे को बहुत आनंद देता है, इसीलिए मैं प्यार करता हूँ। तो ये प्यार क्या हो जाता है? ये काम हो जाता है। एक काम और प्रेम, इसमें क्या भेद है? ये भागवत में बताया गया। सुस्पष्ट जीवन का लक्ष्य, ये जीवन का लक्ष्य ऐसा ही होता है, कृष्ण प्रेम लाभ करना जीवन का लक्ष्य होता है। और इस मनुष्य जन्म में ही हम लोग कोशिश कर सकते हैं इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए। पशु जन्म में ये नहीं हो सकता है, पशु जन्म में नहीं हो सकता है। मनुष्य जन्म जब मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, उसमें से ये प्रयास किया जा सकता है। हम लोग सब कोशिश करते हैं आनंद सुख पाने के लिए, लेकिन इस जगत में ऐसा कोई चीज नहीं जो कि सबको सुख देता है। ये सुख अपेक्षित होता है, रिलेटिव होता है। जगत का सुख, जो चीज हमारे लिए सुख दान करता है, वो आपके लिए दुख का कारण हो सकता है। ऐसा होता है ना? सब लोगों का सुख का भित्ति एक नहीं होता है, अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? जैसा पाश्चात्य लोगों का खाना का तरीका एक तरीका होता है, एक तरीका खाना अच्छा लगता है, भारतीय लोगों को एक तरीका खाना अच्छा लगता है। भारत में भी साउथ इंडियन को एक चीज अच्छा लगता है, बंगाली को दूसरा चीज अच्छा लगता है, नॉर्थ इंडियन को और तीसरा चीज अच्छा लगता है। ये सब एक खाना, एक खाना भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न खाना से आनंद आते हैं। क्यों? एक सुअर सुअर चीज, चीज को क्या बोलते हैं, सुअर, एक सुअर को, एक सुअर को एक अच्छा बनाना, केला को मधु हनी में डुबा के एक सुअर को देने से क्या करेगा? और मुंह मुड़ के भाग जाएगा। और सुअर को एक प्लेट में अच्छा बिस्था डालो और सुअर को दो बिस्था, तब क्या करेगा? खूब आनंद में खाएगा। ये मनुष्य को बिस्था देकर खाया? मनुष्य नहीं खाएगा। इस सुअर को बहुत आनंद आएगा, उससे बहुत आनंद आएगा। एक ही चीज ये मनुष्य देने से, हाँ, वो उसको कैसा लगेगा? और वो चीज सुअर के लिए कुछ कितना आनंद का बात होता है। इस जगत में हम लोग सोचते हैं जो इसको प्राप्त होने से मेरा आनंद आएगा, उसको प्राप्त होने से मेरा आनंद आएगा, ये किसी को प्राप्त होने से मेरा आनंद नहीं आएगा। क्यों? इसका पीछे का बड़ा साइंस है, विज्ञान है। ये क्या होता है? ये आत्मा जीव इस जगत में जिससे सोचता है, ओ, इसको प्राप्त होने से मेरा आनंद होगा, इससे मेरे को आनंद लगता है, सुख आता है, वो आत्मा का सुख नहीं है। वो हर जीव त्रिगुणात्मक का माया का द्वारा प्रभावित होता है। जो गुण का द्वारा प्रभावित है, एक गुण का अनुसार उसका स्वभाव होता है, और स्वभाव का अनुसार उसको भिन्न भिन्न चीज अच्छा लगता है। तो सत्वगुण का द्वारा प्रभावित होता है, तो सत्वगुण का चीज उनका अच्छा लगता है। साग सब्जी खाएगा, दूध खाएगा, ओ, उससे आनंद पाता है। और जो रजोगुणी लोग, रजोगुण का प्रभाव है, तो मद खाएगा, दारू पिएगा, हाँ, और क्या, मदिरा पान करेगा, मांस खाएगा, ये सब चीज उसको अच्छा लगेगा। अब बहुत कर्मठ रहेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, हाँ, स्थिर होकर रह नहीं पाएगा। ये रजोगुणी लोग का अच्छा लगता है। और तमोगुणी लोग को क्या अच्छा लगता है? गंधक की गंदगी चीज खाएंगे, बासी चीज खाएंगे, और जो गंधक मांस मछली जो सूख जाता है उसका सेंट बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया अच्छा लगता है। तीन चार दिन का जो भात होता है उसका अच्छा लगता है। देखिए लोगों को जो अच्छा लगता है वो अच्छा आत्मा का, अच्छा आत्मा को क्या अच्छा है उसके लिए नहीं, और जिसके ऊपर जैसा गुण का प्रभाव है उसको उस अच्छा लगता है। इसलिए गौरी मठ था रेंगुन का, गौरी मठ था भक्ति सिद्धांत सर्वसम ठाकुर का। तो जब कोई उत्सव होता था तो मंदिर में वो लोग पूरी लुची भाजते थे, घी में लुची बनाते थे, तो घी का गंध जब जाता था तो गांव का लोग तो लाठी लेके आते थे, अरे क्या तुम क्या बनाते हो, दुर्गंध में रह नहीं सकते हैं। वो घी का गंध दुर्गंध लगता था उन लोग को, वो लाठी लेके आते थे भक्त को मारने के लिए। और वो लोग का जब उत्सव होता था कैसा उत्सव है, उन लोग क्या करते थे हर गांव में एक पत्थर का बहुत बड़ा क्या कुंड बनाते, कुंड पत्थर पत्थर का पत्थर में पत्थर से एक बहुत बड़ा क्या
कुंड
डालने के लिए, नहीं आज एक कुंड बनाते पात्र बनाते थे पत्थर का पात्र। और लोग क्या साल भर उसी इलाका में जितना कुत्ता बिल्ली जितना पशु मर जाते थे सब इकट्ठा करते थे, जो जिधर पशु मर जाएंगे सब अड़के उस पात्र में रखेंगे और साल भर वो पत्ते रहेंगे क्या सड़ रहेंगे, सड़ते रहेंगे, सड़ते रहें, सड़ते रहेंगे। और एक दिन उत्सव होगा तो उसे सब घर से क्या बर्तन लेके आएंगे, लाइन में बैठेंगे और वो जो दुर्गंध में रहा नहीं सके लेकिन वो लोग बहुत बढ़िया गंध है, साल भर ये साल रहा जो पशु पक्षियों का रखा हुआ है तो उसका क्या एक एक स्पून करके सब बांध के खाएंगे, वो गंध वालों को बहुत आनंद लगता है। और घी से पका हुआ जो पूरी का गंध वो अच्छा नहीं लगता है। तो इससे इससे मालूम होना चाहिए ये हम लोग को ये अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है ये हमारा लिए अच्छा नहीं, क्यों ये हमको अच्छा लगता है, क्यों हमको अच्छा लगता है, जो किस चीज हमको अच्छा लगता है क्यों अच्छा लगता है, एक विशेष गुण का प्रभाव के कारण, विशेष गुण का प्रभाव के कारण हम लोग गुण में बद्धा है, इसलिए एक एक चीजों के प्रति हमारा आसक्ति आ जाता है। तो त्रिगुणातीत आत्मा के लिए एक कोई भी चीज आनंद नहीं देता है, एक कोई भी चीज आनंद नहीं देता है। इसलिए असली आनंद का संधान एक गीता भागवत में ग्रंथ में दिया गया। तो हम लोग इस भौतिक जगत में फंसे हुए तो जो स्थिति में रहे हुए थोड़ा थोड़ा ये भौतिक सुख को प्राप्त करके हम लोग सोचते हैं यही जीवन का आनंद है, यही सुख है, लेकिन जीवन का असीम अनंत आनंद है। ये अनंत आनंद कैसे हम लोग प्राप्त होगा, जब हम लोग भगवान का सेवा में निजुक्त हो जाएंगे। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताए जीवन का अनंत आनंद आत्मा के लिए एक थोड़ा आनंद सुख यथेष्ट नहीं है, आत्मा के लिए अनंत आनंद चाहिए। जैसा इस शरीर में एक घाव हो जाता है, घाव होता है थोड़ा बॉयल, बॉयल को क्या बोलते हैं हिंदी में फोड़ा, जब फोड़ा होता है ये फोड़ा जब होता है बच्चा का फोड़ा होता है तो माँ क्या करता है जाके फोड़ा के ऊपर थोड़ा हवा देते हैं, तो हवा देने से क्या होता है थोड़ा आराम पाता है बच्चा, थोड़ा आराम पाता है, तो बच्चा रोना बंद कर देता है थोड़ा आराम पाता है। तो माँ तो सारा दिन अफू नहीं देगा उसे बैठ के, तो माँ जब काम करने के लिए चले जाता है तो बच्चा क्या करता है जोर से फिर रोना शुरू करता है। तो फोड़ा को सुधारने का उपाय फू देना नहीं, थोड़ा ऐसा करने से फोड़ा का जो व्यथा उससे थोड़ा क्या होगा कम हो जाएगा, फिर फोड़ा तो अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा माफी हम लोग इस जगत में जो सुख प्राप्त होता है इस फोड़ा को फूक फूकिए हिंदी में फूक फूकने से, फोड़ा को फूकने से जैसा थोड़ा दुख कम हो जाता है इस संसार का सुख ऐसा ही है। सब हम लोग सब लोग अच्छा तरीका मालूम होना चाहिए। हम लोग जो सोचते हैं ये करने से वो करने से हमारा दुख चल जाएगा, एक दुख ऐसा नहीं जाता है। और थोड़ा को फूंकने से थोड़ा रेशा, थोड़ा को फूंकने से थोड़ा आराम पाते हैं हम लोग, थोड़ा आराम लाभ हो उतना ही बात। आत्मा के लिए जो आनंद चाहते हैं वो आनंद आत्मा नहीं प्राप्त हो सकता है। इसीलिए हाँ चैतन्य महाप्रभु ने इधर आए और ये उपाय हम लोग दिए। ये भगवान का साथ कोई प्रेममय संपर्क हम लोग कैसे स्थापन कर सकेंगे। सबसे श्रेष्ठ उपाय दिया गया इस कलयुग में, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नाचते व नाचते व नाचते व बच्चे में। किसी को कुछ भी छोड़ना नहीं, हाँ संसार को छोड़ना नहीं, कृष्ण और संसार करो। क्या छोड़ना है? कुछ तो छोड़ना है। क्या छोड़ना है? सारी अनाचार, अनाचार को परित्याग करो। हाँ दुराचार को परित्याग करो, अनाचार को परित्याग करो। अब जिसके प्रति दया करो आप कृष्ण का नाम करो। यही भागवत धर्म, यही परम धर्म होता है। तो इसी धर्म को जो भी ग्रहण कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हर धर्म में भगवान का नाम लेना तो ही है। तो इसलिए आज ये एकादशी तिथि, एकादशी तिथि बहुत तात्पर्यपूर्ण होता है। जो एकादशी को भक्ति का जननी करके मानते हैं, हाँ एकादशी तिथि का दूसरा नाम होता है माधव तिथि, जिसको माधव तिथि बोलते हैं, जिसको हरिवासर बोलते हैं, हरिवासर बांग्ला में बासर बोलते हैं ना, बासर बीए बासर बीएर वासर बोले ना, बीएर वासर माने की बीएर दिन। तो हरिवासर, हरिवासर का मतलब हरि का दिन है। ये आज भगवान का दिन है। भगवान का दिन का मतलब क्या होता है ना, आज दिन सारा दिन भर मैं भगवान के लिए बिताऊंगा, भगवान का साथी में आपको रखूंगा। आज हम लोग एकादशी उपवास करते हैं ना, उपवास का मतलब क्या है? हाँ उपवास का मतलब भगवान का उपवास, वास का मतलब वास करना, हाँ उपवास मतलब निकट, हाँ वास करना। ऐसा तो उपवास का मतलब हम लोग फास्टिंग, नहीं खाना, तो एक अर्थ होता है। और दूसरा अर्थ होता है आज हरिवासर उपवास का मतलब भगवान का सन्निकट, हाँ वास करना। कैसा बात करेंगे? भगवान का कथा श्रवण का माध्यम से, नाम संकीर्तन का माध्यम से, हाँ भगवान का हर समय भगवान का साथ में रहना। तो एकादशी व्रत हम लोग करना बहुत जरूरी है। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालना करी, हाँ कृष्ण बसती बसती बोले परम आदरे भरी। माधव तिथि भक्ति जननी एकादशी, आज एकादशी व्रत। आप लोगों से कितना लोग एकादशी करते हैं? हाथ उठाए। ओ बहुत सारे लोग, सब एकादशी व्रत करते हैं, बहुत अच्छा है। तो ये एकादशी ये भक्ति का माँ होता है। भक्त लोग के लिए त्याग तपस्या उपवास जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण बताए उद्धव को, न साधे की मांग जोगो, न सांख्य धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तपस्याग जथा भक्ति मम अर्जित। और उद्धव भक्ति मेरे को जैसा आकर्षण कर सकते हैं, वैसा न साधय की मांग योग, योग धर्म स्वाध्याय तपस्या त्याग, वो कुछ भी उतना मेरे को आकर्षण नहीं कर सकता है, भक्ति जैसा मेरे को आकर्षण कर सकता है। भक्ति का पास में भगवान का आकर्षण करने का शक्ति पूर्ण मात्रा से है। भगवान और किसी का अगर इतना आकर्षित नहीं होते हैं तो भक्त लोगों के लिए एक त्याग तपस्या को जरूरत नहीं है। लेकिन एकादशी व्रत त्याग करेंगे, क्यों करेंगे ना, ये विष्णु भक्ति बढ़ाएगा, विष्णु का प्रीति विधान करेगा, विष्णु का संतुष्ट विधान करेगा। इसीलिए एकादशी व्रत हम लोग करते हैं। क्यों ना, एकादशी देवी ये विष्णु का पास एक बार मांग कर लिए थे, मांग लिए थे। जब भगवान विष्णु मुरासुर के साथ कठोर युद्ध होता था तो भगवान विष्णु युद्ध क्षेत्र परित्याग करके चले गए। एक गिरी गहोर में जाके विश्राम करते थे। उस समय ये मुरासुर जाके भगवान को आक्रमण करने के लिए गया। जो आक्रमण करने के लिए गया तो भगवान तो योग निद्रा में सोते रहते हैं। तब जो आक्रमण करने के लिए गया तो भगवान का शरीर से एकादशी देवी आविर्भूत हुई। आविर्भूत होकर वो तो भगवान का शक्ति दिव्य शक्ति तो साथ साथ असुर को मार डाले। तो भगवान जब नींद से जागे, भगवान तो जागते हम लोग तो नींद नहीं जाते हैं। हम लोग जैसे नींद जाते भगवान ऐसे नींद जाते हैं नहीं, हम लोग जब नींद जाते कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन भगवान का सब मालूम है। हाँ, भगवान सोए रहे उसी समय भगवान सब कुछ काम करते हैं। इस जगत में कौन पालन करते हैं? हाँ, ब्रह्मा सृष्टि करता है, शिव संहार करता है और विष्णु पालन करते हैं। तो भगवान विष्णु कैसे पालन करते हैं? भगवान अनंत शेष पर सोए रहे बस सब कुछ काम हो जाता है। भगवान योग निद्रा ऐसा होता है, जब भगवान सो जाते हैं सब कुछ ठीक काम हो जाता है। तो भगवान सोए हुए तो असुर आया आक्रमण करने के लिए, उनका शरीर से देवी आविर्भूत हुई और उनको मार डाली। और जब भगवान जागे तो पूछो, तुम कौन हो? सब मालूम है भगवान को, तो तुम कौन हो, ये असुर कौन मार डाला? तो एकादशी देवी बताए, मैं तुम्हारा शरीर से आविर्भूत हुई, तो एक असुर तुमका आक्रमण करता था, मैं उनको मार डाली। तो भगवान हो, मैं तुम्हारा ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ देवी, मैं तुम्हारा ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, तो मैं क्या वर तुमको दे सकता हूँ? तब एकादशी देवी बताए, तो मेरे को एक बार आप दीजिए, मेरा तिथि में जो व्रत पालन करेंगे तो तुम्हारा चरण में उनका भक्ति होगा, एक बार मेरे को चाहिए। तो इसीलिए भविष्य में लोगों ने एकादशी व्रत करते हैं, करने से भगवान भी ऐसा पुराण में वर्णना किया गया, पद्म पुराण में, एकादशी व्रत करने से स्वर्ग प्राप्त होगा, एकादशी व्रत करने से ये प्राप्त होगा, एकादशी व्रत करने से वो प्राप्त होगा, बहुत सारी जड़ भौतिक वस्तु प्राप्त होगा। लेकिन एकादशी व्रत का ये असली लक्ष्य नहीं है। एकादशी व्रत एक गौण ये मुख्य उद्देश्य नहीं, ये अनुसंगिक गौण उद्देश्य है। एकादशी व्रत का मुख्य लक्ष्य मुख्य उद्देश्य होता है भगवत प्रीति विधान, भगवान विष्णु को प्राप्त होना, भगवान विष्णु को प्रीति विधान करना एकादशी व्रत का लक्ष्य होता है। तो इसलिए हम लोग को एकादशी व्रत आशा से करना चाहिए। आशा से करना चाहिए का मतलब एकादशी व्रत के बारे में पुराण में जैसा वर्णन किया गया मैं सुना, सही एकादशी व्रत करना है तो ऐसा ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि में दिन में एक बार खाना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए, रात को नहीं सोना चाहिए। और एकादशी तिथि में दिन भर कुछ खाना पीना सोना कुछ नहीं, एकादशी रात को भी कोई सोना नहीं चाहिए। द्वादशी को सूर्य उदय होगा फिर अनुकल्प खाए, क्या खाएंगे, द्वादशी पालन करेंगे, इतना कठोर ऐसा कोई करता है एकादशी व्रत करते हैं क्या? निर्जल एकादशी सारा दिन भर खाते नहीं कोई, आज सारा दिन खाते नहीं, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ सारा दिन खाते नहीं, काल खाए नहीं, रात को जागे रहे ऐसा कोई है? आज रात को जागे रहेंगे ऐसा कोई है? नहीं, ये करना बहुत मुश्किल है, एक प्रभु करेंगे, ये करना बहुत मुश्किल है। हाँ, इसीलिए हमारे आचार्य लोगों ने ये कॉलेज मानस का ताकत देख के बताया कि ठीक है, तुम सारा दिन नहीं खा के रह नहीं पाएंगे तो तुम अनुकल्प खाओ, अन्न मत खाओ, अन्न नहीं खाना, अनुकल्प खाओ। अनुकल्प का मतलब क्या है? थोड़ा सा खाओ तो पेट में एसिडिटी नहीं हो जाएगा, मतलब एसिडिटी हो जाएगा, थोड़ा सा अनुकल्प खाओ, थोड़ा सा खाओ। लेकिन हम लोग तो एकादशी में बहुत खाते हैं, बहुत बड़ा फीस होता है एकादशी, फीस सिस्टम में एकादशी फीस होता है। तो प्रोफेसर बोलते हैं एटलीस्ट ग्रेन मत खाओ, सस्ते मत खाओ। पांच किस्म का सस्ते होता है, क्या होता है? चावल एक सस्ते होता है, गेहूं, जौ, सरसा होता है, और क्या होता है? दाल होता है, चावल, दाल, जौ, सरसे और जौ। ये पांच तरीका जो सस्ते होता है, सस्ते में पाप पुरुष से बात करते हैं, इसलिए उसको परिचय करके फल मूल सब्जी खा के एकादशी करते हैं। तो इस एकादशी तिथि में भगवान का नाम संकीर्तन करना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये भक्ति योगों का भक्ति योगी जो होता है, हर तरीका जो योग प्रक्रिया है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है और भक्ति योग है, ये भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ होता है। ये भक्ति योग ही भगवान को हाँ प्राप्त करा सकते हैं। इसलिए आज ये बहुत पुण्य तिथि है, एकादशी तिथि, तो आप लोग के साथ मिलकर मेरे को बहुत आनंद आता है। इसलिए ये जैसा राज्य है, ये राज्य है, ये पाप का राज्य है, ये पाप का राज्य है। जब इंद्र क्या एक ब्राह्मण का वध क्या था, कौन सा ब्राह्मण का वध क्या था, हाँ गुरु कौन सा त्वस्त था, त्वस्त का पुत्र था विश्वरूप। ये इंद्र क्या क्या एक दिन आनंद करता था सभा में बैठ के, उनका गुरुदेव आए, बृहस्पति आए, उनका गुरु बृहस्पति आए, तो इतना आनंद नृत्य में मग्न हुआ था, तो गुरुदेव आए तब उसको मालूम नहीं पड़ा, वो खड़ा नहीं हुआ, गुरु को थोड़ा स्वागत नहीं किया, उसका सम्मान भी नहीं किया, तो ऐसा देख के गुरु बृहस्पति उधर से चले गए। तब इंद्र को ज्ञान आ गया, मैं तो बहुत बड़ा अपराध कर गया, अभी गुरु जी आए मैं उसको सम्मान नहीं किया। एक देवता लोग गुरु को भगवान को सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन पूजा का सम्मान का लक्ष्य है मेरे को कुछ प्राप्त होगा, मेरा स्थिति ठीक रहेगा, हाँ मेरा ऐश्वर्य ठीक रहेगा। तो जब बृहस्पति चले गए तब इंद्र बहुत डर गया, अभी क्या होगा मेरा अवस्था, मेरा ऐश्वर्य सब खो जाएगा। तब ब्रह्मा के पास गया, तो ब्रह्मा ने बताया देखो गुरु का कृपा का व्यतिरिक्त तो कुछ नहीं हो सकता है, तुम दूसरा गुरु ग्रहण करो। तो कौन गुरु होगा, तो त्वस्त का पुत्र विश्व रूप है, उसको गुरु करके तुम मानो, वो छोटा बच्चा है लेकिन वो तुम लोग का ठीक गुरु होगा। तो त्वस्त को गुरु करने के लिए गए, तो त्वस्त को बताया देखो तुम बहुत बड़ा महात्मा हो, तुमको हम लोग गुरु करके मानते, तुम हमारे लिए यज्ञ करो। तो त्वस्त का पिता था देवता, उनका माता था असुर, हाँ असुर का वंश से परिवार आए थे। तो त्वस्ता देवताओं का गुरु बना विश्वरूप, विश्वरूप देवताओं का गुरु बना, लेकिन जब यज्ञ शेष हो जाता था अंत में वो चुपके चुपके असुर लोगों को ले भी आहुति देता था उधर, तो इंद्र एक दिन पकड़ लिया, अरे तो असुर लोग को भी यज्ञ का आहुति देते हैं, तो इंद्र जगह साथ साथ उसको सिर को काट दिया। हाँ उनका तीन सिर था, एक मुंह में चूरा पान करता था, एक मुंह में अन्न खाता था और एक मुंह में सोमरस पान करता था, और तीन सिर को काट दिया, जो काट दिया उसको ब्रह्म हत्या पाप लग गया। तो ब्रह्म हत्या पाप लग गया, ब्रह्म हत्या पाप से कैसे छुटकारे मिलेगा, तो जो पाप को तो चार भाग किया, चार भाग करके हाँ को बांट दिया, तो एक भाग दिया था पृथ्वी को एक भाग दिया था, तो वो पाप ग्रहण किया, पृथ्वी पाप ग्रहण किया, तो पाप कैसा प्रकाशित होता है, उत्तर भूमि मरुभूमि, जिधर मरुभूमि है वो पाप ग्रहण किया, तो और एक बार उसको मिला पृथ्वी को, जो पृथ्वी में जिधर जिधर गड्ढा हो जाएगा वो गड्ढा ऐसा भर जाएगा, भाई समतल हो जाएगा, और उसके एक्सचेंज में वो पाप लिया, एक भाग पाप लिया था। तो मेरा बोलने का मतलब तो इस जगह पर भी वो आप लोग जो हरि कथा और हरि कीर्तन का व्यवस्था किए हुए, ये बहुत आनंद का बात है। हाँ भारतवर्ष तो धर्म भूमि है, उधर तो चलता है, लेकिन आप लोग इधर आए इसीलिए प्रभुपाद का कृपा से आज इधर भी हरि नाम हो रहा है। ये चैतन्य महाप्रभु का महान कृपा के कारण से होता है। चैतन्य महाप्रभु गोलोक का प्रेम धन इधर लेकर आए, गोलोक से प्रेम धन ले आए, तो प्रेम धन गोलोक से जो ले आए उसका लक्षण कैसा होता है, स्वभाव कैसा होता है, जैसा हमारा इस भौतिक जगत में एक से एक माइनस करने से कितना रहता है, 1-1 0 होता है, लेकिन वैकुंठ में ऐसा नहीं होता है। चिन्मय जगत में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। एक से एक माइनस करने से कितने रहते हैं? एक ही रहता है। भौतिक जगत में एक से एक माइनस करने से शून्य रहते हैं, लेकिन चिन्मय वैकुंठ में वन माइनस वन इक्वल टू वन। लेकिन चैतन्य महापुरुष के लिए वन माइनस वन इक्वल टू दो हो जाता है। एक से एक माइनस करने से दो हो जाता है, ये चैतन्य महापुरुष समझता है। अब दूसरा जगत में नहीं, तो चैतन्य महापुरुष का हाँ एक श्रेष्ठता होता है। एक से एक ले जाने से वो बढ़ जाता है, ये स्वभाव है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवत धाम से एक घड़ा भर के घड़ा भर के कलश भर के पूरा भर के कृष्ण प्रेम ले आए, तो वो कलश भरा हुआ है कृष्ण प्रेम में, उसे एक लोटा एक लोटा निकाल दो कृष्ण प्रेम, तो क्या होगा? तो डबल हो जाएगा फिर। हाँ उसको ना उसको वो घड़ा से कलश से निकल जाएगा, फ्लडिंग ओवरफ्लो करेगा। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम ले आए तो नवद्वीप में तो जितना प्रचार होता है वो बढ़ता रहता है और ओवरफ्लो करता है, तो बाढ़ आ जाता है, प्रेम का बाढ़ आज सिलक प्रभुपाद सारा दुनिया भर एक चैतन्य महापुरुष का प्रेम कृष्ण नाम का बाढ़ का प्रेम का बाढ़ बहते हैं, तो हर लोग का प्रेम हर लोग पाता है। चैतन्य महाप्रभु ने इतना कृपालु है, देखिए आप लोग भारत बांग्लादेश नेपाल छोड़ के इधर भाग गए, इधर आ गए थे, तो चैतन्य महाप्रभु इतना कृपालु है, आप लोग का पीछे में चाहे तुम किधर जाता इधर आओ तो तुम को बाल को पकड़ के लेते हैं, तुम कृष्ण प्रेम लो तो उधर किधर भागते हो। ये महाप्रभु का श्रेष्ठता है, जो चाहते हैं जो नहीं चाहते हैं सबका पीछे पीछे जाके जो ब्रह्मा का दुर्लभ चीज होता है कृष्ण प्रेम सबको देते हैं। तो आप लोग बहुत भाग्यवान इस देश में रह के भी भक्ति का चर्चा करते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, गीता भागवत अध्ययन करते हैं, हमारा जीवन को यथार्थ रूप से प्रयोग करने का यही एकमात्र उपाय। तो आप लोग ऐसा इकट्ठा होकर भगवान का नाम करेंगे और मनुष्य जीवन को सफल करेंगे, इस शुभ एकादशी तिथि में भगवान के पास हम लोग का ही प्रार्थना होना चाहिए, इस जीवन में हम लोग जैसा कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगा। श्रील प्रभुपाद के पास हम लोग बहुत आभारी थे, वो नहीं होते थे तो आज दुनिया में इस संबंध नहीं पहुंचता था। प्रभुपाद नहीं होते थे तो उन्नत शिक्षा जगत वासियों को नहीं मिलता था। इस जगत में धर्म के बारे में बहुत सारी प्रचार होता है, लेकिन कृष्ण प्रेम के बारे में कुछ प्रचार नहीं होता है। वेद वेदांत उपनिषद के बारे में बहुत सारी प्रचार होता है, लेकिन ये सब शास्त्र का सार निर्यात के बारे में निर्यात क्या है उसके बारे में प्रचार नहीं होता है। तो हम लोग बहुत कृतज्ञ श्रील प्रभुपाद बहुत चेष्टा करके अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावानंद प्रसंग स्थापन किए, जिससे हम लोग ये मौका मिला भगवान के बारे में चर्चा करने का और भगवान के साथ हम लोग का प्रेम में संपर्क को पुनः स्थापन करने का। जय श्री प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंदा की, एकादशी व्रता की, गोविंद प्रेमानंदी।